अध्याय 3 आदि जातियाँ। आदि काल में भारतवर्ष में कौन कौन सी जातियाँ रहती थीं, उनमें किस सीमा तक पारस्परिक संबंध और संपर्क था तथा बौद्धिक आदान प्रदान और रक्त सम्मिश्रण हुआ था, ये सारे प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त हैं। परंतु डॉक्टर V.S. गुहा का मत नवीनतम और सर्वाधिक मान्य समझा जाता है। इस विद्वान के विचार से भारतवर्ष की आदि जातियों को 6 कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला निग्रेटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा माइग्रोलाइट, चौथा भूमध्य सागरी, पांचवा पश्चिमी ब्रेंचिसेफेल और छठवा नॉर्डिक। परंतु पारस्परिक रक्त सम्मिश्रण के कारण इन जातियों की विशेषताएं भी सुनिश्चित और विशुद्ध नहीं है। पहला निग्रेटो, यह जाति भारतवर्ष में प्रायः विलुप्त हो चुकी है। एकमात्र अंडमान द्वीपों में ही इस जाति के कुछ अवशेष मिलते हैं। भारतवर्ष में आसाम की कुछ नागा जातियों तथा टावनकोर, कोचीन आदि कुछ प्रदेशों की आदिम जातियों में भी इस निग्रेटो जाति की कुछ जाति विशेषताएं दृष्टिगत होती है। निग्रेटो जाति भारतवर्ष की प्राचीनतम जाति थी। संभवतः यह अफ्रीका से अरब, ईरान, बलूचिस्तान होती हुई भारतवर्ष में आई और वहां से मलाया, फिलीपींस, न्यू गाइना और अंडमान आदि प्रदेशों में पहुंची। इन प्रदेशों में पहुंचने के लिए इसे जलमार्ग से जाना पड़ा था। अतः स्पष्ट है कि यह जाति नाविक विद्या के प्रारंभिक सिद्धांतों से भी अवगत हो गई हो। कदाचित निग्रेटो जाति कृषि कर्म और पशुपालन जैसे प्रारंभिक उद्योगों से भी अपरिचित थी। अपनी उदरपूर्ति के लिए यह विशेषतया वनों में उत्पन्न होने वाले कंद मूल और फलों के ऊपर ही निर्भर रहती थी। इसके अतिरिक्त यह पशुओं का आखेट भी करती थी। आखेट के लिए इसने संभवतः धनुष बाण का भी निर्माण कर लिया था। समुद्रों के बीच अथवा समुद्र तटों पर रहने के कारण इसे मछलियां पकड़ना भी आता था। प्राचीनतम जाति होने के कारण यह जाति प्रायः बर्बर थी। अतः आगामी मानवीय संस्कृति के ऊपर इस जाति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति के आगमन पर निग्रेटो जाति का पराभव हो गया। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ये संभवतः फिलिस्तीन से भारत आए थे। यहाँ से वे ब्रह्मा, इंडोचीन, मलाया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इन सब देशों में आज भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति के अंश मिलते हैं। भारतवर्ष की निम्न जातियाँ विशेषतया कोल और मुंडा जातियों में इस प्राचीन जाति के अंश विद्यमान हैं। जिस समय आर्यों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया उस समय यह जाति पंजाब तथा शेष उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में विद्यमान थी। आर्यों ने अनास, कृष्णवर्ण और निषाद शब्दों का प्रयोग कदाचित इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति के भारतीय निवासियों के लिए ही किया है। जैसे जैसे आर्यों की संस्कृति और सभ्यता भारतवर्ष में प्रसारित होती गई, वैसे ही वैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति भी उसमें निमज्जित होती गई। परंतु इस निमज्जन के फलस्वरूप आर्यों की संस्कृति सभ्यता के ऊपर भी इस जाति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। विद्वानों का अनुमान है कि हिंदू धर्म और संस्कृति में जो बातें न आर्यों की हैं और न द्रविड़ों की, वे संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति की हैं। उदाहरणार्थ हिंदू धर्म के पशु देवता नाग, मकर, गणेश इत्यादि अवतार, अंडे से सृष्टि की कल्पना आदि इसी प्राचीन जाति के देन हैं। इसी प्रकार पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भारत भूमि में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति के साथ ही आया। निछावर के द्वारा अकुशल निवारण की प्रथा, सिंदूर का पुनित प्रयोग, गोदने की रीति आदि भी इसी जाति की देन है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट लोग कृषि कर्मा थे। अतः भारत में कृषि कर्म की सुस्थिर स्थापना इन्हीं लोगों ने की थी। ये पशुपालन और वस्त्र निर्माण से भी परिचित थे। इन्हें सूत काटना और कपड़ा बुनना आता था। ये लोग झुंडों में रहते थे। परिश्रमी होने के साथ साथ ये विनोदी जीव भी थे। आर्चर महोदय ने भारतवर्ष की कोल, मुंडा आदि जातियों का अध्ययन कर प्राचीन ऑस्ट्रेलाइट लोगों की प्राचीनतम जाति विशेषताओं को स्थिर करने का प्रयास किया है। मंगोलायड कतिपय प्रादेशिक विभिन्नताओं के साथ यह जाति सिक्किम, भूटान, आसाम और भारत ब्रह्मा की सीमा पर आज भी अवशिष्टांशों में विद्यमान है। भूमध्य सागरी द्रविड़ इस जाति की भी कई शाखाएं हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शाखा वह है जो भारतवर्ष में द्रविड़ जाति के नाम से प्रख्यात हुई। द्रविड़ों की जाति विशेषता थी उनके बड़े सिर। इसके अतिरिक्त उनका कद छोटा, नाक छोटी और रंग काला होता था। आर्यों के आगमन के पूर्व भारतवर्ष में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट और द्रविड़ जातियां साथ साथ रह रही थी और संभवतः उनमें पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान और जाति सम्मिश्रण भी हो रहा था। बलूचिस्तान में बाहुई भाषा विद्यमान है। यह द्रविड़ भाषा है। इससे अनुमान होता है केवल बलूचिस्तान ही नहीं वरन समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र इत्यादि द्रविड़ों का निवास प्रदेश था। गंगा जमुना के दो आप के कुछ निवासियों में द्रविड़ों की जाति विशेषताओं के अंश पाए गए हैं। पुनः प्रदेश की सांस्कृतिक एवं भाषा संबंधी मान्यताओं पर भी द्रविड़ जाति का प्रभाव है। इससे प्रकट होता है कि यह दोआब भी द्रविड़ों का निवास प्रदेश रहा होगा। इसी प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर बंगाल में भी द्रविड़ों का प्राचीन अस्तित्व प्रकट होता है। दक्षिण भारत की अनेक वर्तमान भाषाएं द्रविड़ भाषा से ही निकली हैं। इससे प्रकट होता है कि द्रविड़ उत्तरी भारत की भांति दक्षिणी भारत में भी निवास कर रहे थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि आर्यों के आगमन के समय ईरान और अफगानिस्तान में भी द्रविड़ जाति रहती थी। ऋग्वेद में प्रयुक्त दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग द्रविड़ों के लिए ही हुआ है। ईरानी भाषा में भी दस्यु शब्द मिलता है। कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में दहई जाति रहती थी। शब्द साम्य के आधार पर ये प्रदेश द्रविड़ जाति के ही थे। पुनः ऋग्वेद के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि नवागंतुक आर्यों के लिए द्रविड़ जाति नितांत अपरिचित न थी। संभवतः द्रविड़ जाति से उनका परिचय ईरान और अफगानिस्तान में ही हो चुका था। ऐसी दशा में दोनों जातियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान का आरंभ भारतवर्ष के बाहर ही हो गया था। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि द्रविड़ जाति बहुसंख्यक और द्रविड़ सभ्यता सुविस्तृत थी। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि द्रविड़ जाति किस प्रदेश की मूल निवासिनी थी। इस प्रश्न पर विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। रिजले आदि कुछ विद्वानों का मत है कि द्रविड़ भारतवर्ष के ही मूल निवासी थे, परंतु आज अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि आर्यों की भांति वे लोग भी बाहर से ही आए थे। बलूचिस्तान की बाहुई भाषा के आधार पर बिशप कॉल्डवेल का कथन है कि चूंकि यह भाषा द्रविड़ भाषा से मिलती जुलती है, अतः बलूचिस्तान का प्रदेश द्रविड़ सभ्यता का केंद्र था और इसी पश्चिमोत्तर प्रदेश से होते हुए द्रविड़ भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए थे। परंतु कर्नल डोल्डीच महोदय ने इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार बलूचिस्तान में बाहुई भाषा भाषी लोग द्रविड़ नहीं मंगोल थे। उन्होंने उस प्रदेश के मूल निवासियों द्रविड़ों को पराजित करके उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उनकी बाहुई भाषा को स्वीकार कर लिया था। परंतु डोल्टीच महोदय के इस कथन से मुख्य प्रश्न पर कोई आंच नहीं आती। ये बाहुई भाषा भाषी मंगोल जाति के रहे हों अथवा द्रविड़ जाति के, डोल्टीच महोदय भी यह स्वीकार करते हैं कि द्रविड़ जाति बलूचिस्तान में रहती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि वहाँ यह जाति भारतवर्ष में पहुंची अथवा भारतवर्ष के बाहर के किसी देश से आई थी। प्राचीन जातियों के निष्क्रमण का प्रमुख कारण उनके आदि प्रदेश की अनुर्वरता अथवा प्राकृतिक असुविधा रही है। भारतवर्ष सदैव से अत्यंत उर्वर और निवास के लिए नितांत सुविधाजनक रहा है, अतः यहाँ बाहर से ही जातियाँ आती रही हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुविधाओं को छोड़कर कोई जाति बाहर के पर्वतीय अथवा अनुर्वर प्रदेशों की ओर नहीं गई थी। इस आधार पर यही मानना न्याय संगत प्रतीत होता है कि द्रविड़ जाति भी किसी विदेशी प्रदेश से ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान होती हुई भारत में आई थी। आज कोई भी प्रमुख विद्वान यह स्वीकार नहीं करता कि द्रविड़ मंगोल जाति थे या उत्तर पूर्व के मार्ग से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए थे। अधिकांश विद्वानों का यह मत यही है कि द्रविड़ जाति भूमध्य सागरी थी और संभवतः इजियन संसार, एशिया माइनर अथवा फिलिस्तीन से आए थे। जब तक हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की मुहरों की लिपि सफलतापूर्वक पढ़ न ली जाए, तब तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता के प्रणेता कौन थे। परंतु आज अधिकांश विद्वानों की राय यही है कि ये प्रणेता द्रविड़ ही थे। द्रविड़ सभ्यता भारतवर्ष में प्रोटो ऑस्ट्रलाइट जाति की सभ्यता ग्राम प्रधान अथवा कृषि प्रधान थी, परंतु द्रविड़ों की सभ्यता नागरी थी। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में नगरों की स्थापना की थी और सामुद्रिक व्यापार को अपूर्व प्रोत्साहन दिया था। यह व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर आदि देशों से भी होता था। कदाचित संसार में सर्वप्रथम इसी जाति ने नदियों के ऊपर पुल बनाए और बांध बांधे थे। व्यापार के अतिरिक्त अतिरिक्त ये लोग कृषि कार्य में भी दक्ष थे और अनेक प्रकार के अनुत्पन्न करते थे। ये कताई, बुनाई और रंगाई भी जानते थे। ये लोग धातुओं के प्रयोग से परिचित थे और उनसे विविध आभूषण एवं पात्र बनाते थे। वास्तुकला में भी द्रविड़ों ने काफी उन्नति कर ली थी। उनके मकान पक्की ईंटों और पत्थरों से बनते थे। ये मृतकला में भी दक्ष थे और मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन इत्यादि बनाते थे। डॉक्टर बॉर्नेट आदि विद्वानों के मतानुसार द्रविड़ों का समाज मातृ प्रधान था। इस सत्य की अभिव्यक्ति इनके धर्म में ही मातृदेवी के सर्वमान्य प्रधानता से होती है। अनुमानतः इनके समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, परंतु अपने पिता की संपत्ति का नहीं। दक्षिणी भारतवर्ष में अनेक अनार्य प्रथाएं प्रचलित रहीं। उदाहरणार्थ व्यवस्थाकार अपस्तंभ का कथन है कि दक्षिण भारत में ममेरे अथवा चचेरे भाई बहनों में विवाह हो जाता था। आज भी दक्षिण भारत में प्रथा विद्यमान है। कदाचित द्रविड़ सभ्यता का ही प्रभाव है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि द्रविड़ों के देवी देवताओं में सबसे अधिक प्राधान्यता मातृदेवी को दी गई थी। कदाचित इस देवी की उपासना वे भारतवर्ष में आने से पूर्व अपने आदि देश में भी करते थे। उन्होंने परम नारी के साथ ही साथ संभवतः परम पुरुष की भी कल्पना की थी। यह परम पुरुष पशुपति शिव के रूप में प्रतिष्ठित था। कतिपय विद्वानों का मत है कि शिव शब्द ही द्रविड़ भाषा का ही है, जिसका अर्थ लाल होता है। आर्य परंपरा भी शिव को नील लोहित के नाम से पुकारती है। भारतवर्ष में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रलाइट जाति के साथ हुआ था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि द्रविड़ जाति ने ही उसे स्वीकार कर लिया था। द्रविड़ों में पशु पूजा का भी प्रचलन है, जिसमें नाग पूजा प्रधान थी। आधुनिक हिंदू धर्म में गणेश, हनुमान, गरुड़ आदि की पूजा का विकास द्रविड़ सभ्यता के अंतर्गत ही हुआ था। द्रविड़ पशु पूजा के साथ साथ संभवतः वृक्ष पूजा भी करते थे। फल मूल पुष्प पत्र जल आदि से पूजा करने की प्रणाली आर्य नहीं है। संभवतः उनका उदय द्रविड़ों के साथ हुआ था। द्रविड़ों की अधीनता में उनका संपूर्ण प्रदेश छोटे छोटे जिलों में विभक्त था। इनके पृथक पृथक राजा होते थे। ये राजा ईंट और पत्थर के तने हुए मकानों में रहते थे। यही मकान उनके दुर्ग थे। शासन और समाज के संचालन के लिए द्रविड़ों ने अनेक प्रकार के कानून बना रखे थे। युद्ध में ये धनुष, बाण, तलवार, बर्छी, भाला आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। ये दुर्गीकरण के महत्व से भी परिचित थे, परंतु संभवतः इन्होंने युद्ध में द्रुतगामी अश्व का प्रयोग करना न सीखा था। यह भी संदेहपूर्ण है कि ये अश्व से परिचित भी थे या नहीं। अन्य दो जातियों पश्चिमी बैचफेल और नॉर्डिक का भारतीय सभ्यता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि उपयुक्त भूमध्य सागरी जाति का। इन जातियों का भारतीय इतिहास में न कोई महत्वपूर्ण स्थान है और न भारतीय सभ्यता में कोई विशेष योग।